Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Gurudev Om Vishnupada Paramhansa Parivrajakacharya Ashtotara Shata Sri Srimati Srivayan Grace Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Shila Prabhupada Ki ISKCON Founder Acharya, BBT Founder Acharya, Savior of the whole world, Srila Prabhupada Ki, Jayom Vishnupada Paramhansa Parivrajakacharya, Ashtotara Shata Sri Srimat, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnavarunda Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Premse Koho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaura Bhaktavrinda Ki, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, मथुरा द्वारिका पुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमैया की, श्री श्री गौर निताय की, श्री प्रभुपाद की, श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग नमाम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी वपु भक्तों का और वाणी भक्तों का, वाणी संघ भक्तों का हम स्वागत करते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के नवे अध्याय से, जिसका शीर्षक है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं आठवें श्लोक से प्रारंभ होती है और पचासवें श्लोक तक जाती है, तो कुल मिलाकर 43 श्लोक 43। और इसके पूर्व में जब आठवें अध्याय में भगवान नरसिंह देव अपने प्रहलाद को, अपने प्रिय भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जब हिरण्यकश्यप के द्वारा खंभा फोड़कर जब प्रकट होते हैं भगवान, तो उनको तब हिरण्यकश्यप तो मार देते ही है और उसके साथ साथ उनके सभी जो पार्षद थे, सभी राक्षस, उनकी भी भगवान हत्या कर देते हैं। और भगवान इतने क्रोधित रहते हैं कि उनको शांत करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे महान पूरे ब्रह्मांड के व्यक्तिगण भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। पहले तो ब्रह्मा, फिर शिवजी, फिर इंद्र, और इसके अलावा और 14 व्यक्तियों के समूह, तो कुल मिलाकर 17 लोग उनको प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। पहले 1-2-3 तो वैयक्तिक ब्रह्मा शिव और इंद्र, लेकिन इसके बाद 14 जो लोग हैं वो लोग नहीं है, समूह है। जैसे अप्सरा है, गंधर्व है, वैतालिक है, नागलोक है, ऋषिगण है, ऐसे सब एक ऋषि नहीं, अनेक ऋषि, ऐसे सबने मिलाकर 17 लोगों ने, 17 प्रकार के महान हस्तिगणों ने प्रयास किया। इसके बावजूद भी भगवान प्रसन्न न हुए और इतने क्रोधित रहे तो ब्रह्मा जी ने उचित समझा कि उनकी भार्या लक्ष्मी देवी को शांत करना वही कर सकती है, तो उनको भेजा गया है, जाइए आप आपके पति देव को शांत कीजिए, क्योंकि पति कितने भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, पत्नी के पास कुछ तो तरकीब रहती है पति देव को शांत करने की। तो लेकिन भागवतम के इस 90वें स्कंद में बताया गया है कि सा शंकिता, वो शंका करने लगी, ये क्या वही मेरे पति देव है कि कोई और व्यक्ति है, क्योंकि वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री है, तो किसी और व्यक्ति के पास जाएगी नहीं, तो थोड़ा शंका हो गई इनको कि मेरे पति है कि कोई और पति है, किसी और के पति है, तो वो भी जाने को तैयार नहीं है। तो ऐसे स्थिति में प्रहलाद महाराज को बताया गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि आप जाइए, आप प्रयास कीजिए। तो श्री बृहद भागवतामृत में बताया गया है, आचार्य सनातन गोस्वामी बताते हैं कि प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को लक्ष्मी देवी से और अपने जो नित्य पार्षद है उनसे अधिक, बहुत अधिक प्रिय है। तो हम सोचेंगे ऐसे कैसे, तो बताया गया है कि ये जो बाकी पार्षद है ये तो नित्य पार्षद है भगवान के साथ ही, वो नित्य सिद्ध पार्षद है, वो तो उधर ही है भगवान की सेवा में लगे हुए, लेकिन इस संसार में जो आए हुए व्यक्ति हैं उनमें से अगर भगवान देखते हैं कि प्रहलाद जैसे भक्त इतने समस्याओं का उनके साथ झूलने के बाद, उसके साथ होने के बाद, इतनी समस्याओं के बाद भी जो भगवान की सेवा में पूरी तरह से डटे हुए हैं, टस से मस नहीं होते, भगवान की एकमात्र सेवा करनी है, इस विचार से और इसी ही भावना से, इसी जीवन प्रणाली को जो लागू किए हुए हैं, ऐसे प्रहलाद लक्ष्मी देवी और बाकी सब भी जो नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान उनसे, भगवान के उनसे ही भी अधिक प्रिय है प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद की ये प्रार्थनाओं में से कुछ प्रार्थना है, जितना हमें संभव है हम थोड़ा प्रयास करेंगे। तो ये 8वें श्लोक से होता है शुरू, तो कुछ प्रार्थना में गाऊंगा। श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादया सुअगणा मुनयो तसिद्धः सत्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैर्मद् अधुना पिपिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते है। तो इसमें प्रहलाद महाराज कह रहे हैं असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। आज तक ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तमोत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, यद्यपि ये सारे व्यक्ति सतोगुणी एवं परम योग्य है, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूं। तो इस प्रार्थना में हम देखते हैं प्रहलाद महाराज की नम्रता प्रकट होती है। तो नम्रता ये भगवत धाम जाने का एकमात्र उपाय है, विशेषता श्री बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि एब्सोल्यूट अनकंडीशनल ह्यूमिलिटी इज द ओनली एंट्री पास फॉर एंटरिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पेशली गोलोक वृंदावन, कि परमोच्च एब्सोल्यूट अनकंडीशनल बिना किसी शर्त डाले बिना जो नम्रता है उसको, वही एकमात्र एक गेट पास है जिसके द्वारा व्यक्ति गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा अन्य जगह पे जा सकता है लेकिन गोलोक वृंदावन में सवाल ही नहीं उठता। तो हम भी कभी कभी नम्र बन जाते हैं, जैसे मैं हाल ही में 4-5 महीने एक ट्रीटमेंट लिया, तो उस ट्रीटमेंट में जैसे नानी याद आ जाती है, तो बहुत नम्र रहे हम ऊपर से, क्योंकि पूरा शरीर का डामा डोल हो गया, हिल गए अंदर बाहर से। लेकिन जैसे ही अभी लॉकडाउन के कारण दवाई बंद हो गई, तो फिर थोड़ा सा बाहर आ गए उससे, तो वो नम्रता जो कंडीशनल थी उसका नामो निशान नहीं दिख रहा है अभी। तो वैसे नहीं, एब्सोल्यूट अनकंडीशनल ह्यूमिलिटी, परमोच्च नम्रता, और वो भी बिना किसी बाह्य चीजों के अलावा, भाइयों को चीज नहीं होनी चाहिए जिसके कारण वो नम्रता है, वो हमेशा रहती है, ऐसी नम्रता की जरूरत है। तो वो नम्रता यहाँ प्रकट हो रही है प्रहलाद महाराज के लिए। रोज सुबह हम जो गाते हैं नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने, तो एकमात्र प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे, न तो वो भगवान क्योंकि हिरण्यकश्यप के वचन थे उसको सत्य करने के लिए कि इस खंभे में है क्या वगैरह, अर्थात वो जय विजय के माध्यम से भगवान उनको भी प्रसन्न करना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद ने कहा था कि इस खंभे में भगवान है, तो बस भगवान उनके वचनों को सिद्ध करने के लिए और उनको प्रसन्नता देने के लिए ही भगवान प्रकट हुए। और बाकी कोई भी जो महान व्यक्तिगण है वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहे। और ये प्रार्थनाओं के बाद हम देखते हैं 50वें श्लोक के बाद, जैसे ही 91वां श्लोक आता है तो वहां तुरंत भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वचन बोलते हैं प्रहलाद के प्रति, बहुत मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो हम देखते हैं कि इनकी प्रार्थनाओं से भगवान तुरंत प्रसन्न हुए। और बाकी कितने सारे व्यक्तिगण, महान ब्रह्मा, शिवजी, इंद्र और बाकी सब, उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन बाद इसके बावजूद भी प्रहलाद के हृदय में तनिक भी कुछ गर्व अहंकार नहीं है। वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि भगवान बस थैंक यू वेरी मच, आप आ गए, मुझे बचाया, मैं कब से प्रार्थना कर रहा था, आप थोड़े लेट आए, ठीक है देर से आए लेकिन दुरुस्त तो आए। ऐसा बिल्कुल भी भाव नहीं है। और ये भी भाव नहीं है कि मैं कितना महान हूँ, आपको तो आना ही था। नहीं, वो कह रहे कि ब्रह्मा जैसे महान व्यक्तिगण जो सत्व गुण में है, वो अगर आपको संतुष्ट नहीं कर पाए तो मैं भला कौन, जैसे बोलते हिंदी में कि झड़ की पत्ती, मैं कैसे भला आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। ये सब तो सत्व गुण में स्थित व्यक्ति है, लेकिन मैं क्या, मैं तो हिरण्यकश्यप जो एक असुर रहे उनका पुत्र, तो मेरी रग रग में एक असुर का खून बह रहा है, तो मेरी नस नस में, तो इस तरह से मैं तो रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव का हूँ। लेकिन हम देखते हैं वैसा नहीं है। यहाँ तक कि हमारे कुछ आचार्य कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यप का ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा था नरसिंहदेव के द्वारा, उनके ही गोद में रखे थे, तो वो जो उनके जो आंत निकाल रहे थे भगवान बाहर, और हम देखते हैं कैसे वो अपने गले में डाल रहे थे, तो उसका कारण क्या है, इतना आंत वो सब बाहर निकालने की जरूरत क्या है, उसका तो हृदय फाड़ दिया भगवान ने, वो तो मर ही जाता था। तो आचार्यगण बताते हैं कि वो क्यों कर रहे थे वैसे, क्योंकि वो देख रहे थे कि इसी आंतड़ियों में से ही ये प्रहलाद का जन्म हुआ है, तो हो सकता है कुछ और एक प्रहलाद अंदर है, कोई और एक प्रहलाद आ जाए, भक्त मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो भगवान बहुत प्रसन्न थे, तो इसलिए वो इतने प्रहलाद महाराज से प्रसन्न है। तो हम देखते हैं कि एकमात्र प्रहलाद को प्रसन्न करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, न तो असुर हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए या अन्य चीजों के लिए। यहाँ तक कि जब देवता भी हैरान होते हैं और भगवान के पास, भगवान शिरोदक्ष विष्णु के पास जाके प्रार्थनाएं करते हैं, तो भगवान कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है हिरण्यकश्यप को बड़ा आतंक मचा रहा है, लेकिन जब वो मेरे भक्त को जब परेशानी देगा, उसके प्रति जब अपराध करेगा, तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो ये तो पहले से ही जाहिर था कि आएंगे भगवान तो बस प्रहलाद के लिए आएंगे और किसी कारण के लिए नहीं। तो अन्य सारे गौण कार्य है, गौण कारण है, लेकिन मुख्य कारण है एकमात्र प्रहलाद। और क्यों? क्योंकि प्रहलाद बहुत ही नम्र है। हम देखते हैं कि कभी भी उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना नहीं की कि भगवान क्या कैसी स्थिति से गुजार रहे हैं, कृपया इसे बाहर निकालिए, जल्द से जल्द बाहर निकालिए, आप है कि नहीं, इतना क्यों देरी कर रहे हैं, क्या ट्रेन्स बंद हो गए हैं, फ्लाइट तो चालू है, ऐसे कुछ भाव नहीं है बिल्कुल। वो बिल्कुल ये भाव में है कि बस मैं तो पापी हूँ और ये सब तो सहन करना ही है। लेकिन प्रहलाद ने अपनी भक्ति, अपना जो प्रचार है, यहाँ तक कि अपने पिताजी के प्रति, वो भी बंद नहीं किया, प्रचार चालू ही रहा। आज सुबह में एक महान एक कथा सुन रहा था चित्रकेतु की, तो चित्रकेतु बड़े परेशान थे क्योंकि उनको पुत्र नहीं था। और यहाँ हिरण्यकश्यप हम देखते हैं उनके चार चार पुत्र है, लाद सल्लाद नाम दिए उनके, प्रहलाद लाद वगैरह, तो उनमें से महान थे प्रहलाद, एक पुत्र है सिर्फ चार में से, वो मान नहीं रहा है उनकी एक छोटी सी बात को कि नारायण के बजाय मेरा नाम का जप करो, तो उसके कारण वो इतने हिल गए, इतने परेशान। और उस तरफ है चित्रकेतु महाराज जिनको एक भी पुत्र नहीं, तो वो परेशान है, पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए। तो इस तरह का ये संसार है कि कोई भी स्थिति में व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता, लेकिन भक्ति करे तो संतुष्ट रह सकता है, ये प्रहलाद के उदाहरण से हम देख सकते हैं। और प्रहलाद महाराज हमारे लिए एक बड़े आदर्श उदाहरण है, क्योंकि हम सब ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ ये सब समस्याएं चलती जा रही है और चलती ही रहेंगी, और सबसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा प्रहलाद को। न तो बाह्य रूप से उनको, हम जो जानते हैं कि कैसे बड़े बड़े विषैले नाग सर्प इत्यादियों के साथ उनको डाला गया, जो बहुत ही क्रूर और जो बहुत ही पागल हाथी थे उनके पैरों के नीचे उनको पैर रौंद दिया गया, या उनको उबलते हुए ऑयल में तेल में डाला गया, ये तो सब शारीरिक समस्या है। उसके अलावा उनको इतना तिरस्कार किया गया, इतना उनको नाना किया उनके साथ, फिर भी वो कभी शारीरिक हो मानसिक हो उन्होंने भक्ति छोड़ी नहीं। तो ऐसे भक्त प्रहलाद इतने नम्र है, इतने नम्र है, ये उनकी नम्रता उनके शुरुआत में ही जैसे मुख खुलता है, एक व्यक्ति क्या है ये हम समझ सकते हैं जब उसका मुख खुलता है। प्रभुपाद सेज अ फूल रिमेंस अनडिटेक्टेड टिल ही स्पीक्स। एक मूर्ख व्यक्ति ऊपर से बहुत कोट सूट टाई बूट पहना है सब, ऐसा लगता है वाह क्या जेंटलमैन है, लेकिन जैसे ही मुंह खुलता है तो समझ में आता है माय गॉड ये तो सब उल्टी कर रहा है, सब जहर बाहर आ रहा है। लेकिन प्रहलाद जैसे महान भक्त हैं तो हम देखते हैं कि वो उनके हृदय की जो भावना है उनके वचनों के द्वारा प्रकट हो रही है। तो जब इस संसार में जब ओपन हार्ट सर्जरी होता है तो व्यक्ति के हृदय को खोलते हैं डॉक्टर लोग जो उससे अधिक महान रहते हैं, उनकी शरीर में समस्या नहीं है, जो रोगी है उसके हृदय को फाड़ा जाता है और उसके हृदय में कुछ तो समस्या तो है ही, कुछ गंदगी है, तो उसको वो डॉक्टर प्रयास करते हैं और निकाल देते हैं और फिर वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो महान भक्त जो श्रीमद् भागवतम में प्रकट होते हैं उनका जो हृदय है वो प्रकट होता है इन प्रार्थनाओं के द्वारा। इसलिए इन प्रार्थनाओं को पढ़ने में, बारम्बार पढ़ने में आनंद लेना चाहिए। लेकिन समस्या यह है जैसे वो रोगी है उसका हृदय फाड़ने से उसके हृदय के अंदर की गंदगी दिखाई देती है, लेकिन जब महान भक्त अपने प्रार्थनाओं के द्वारा अपना हृदय खोल देते हैं तो हमें अपने हृदय के अंदर की गंदगी बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देती है जिससे हम डरते हैं। तो इसलिए जैसे प्रार्थना शुरू हो जाती है तो हम वो बंद ही कर देते भागवतम को, नहीं तो फिर पन्ने पलट देते कहाँ खत्म हो रही है, लास्ट की प्रार्थना क्या है, उसके आगे कथा कैसे जारी रही वो हम जानना चाहेंगे। तो ये समस्या है, लेकिन समस्या ये चली जाएगी जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा, भागवतों को पढ़ते रहेंगे हालांकि प्रार्थना अच्छे लगे या न लगे, पढ़ते रहेंगे और व्यक्ति भागवतों की सेवा करते रहेंगे तब धीरे 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 हृदय शुद्ध हो जाएगा। तब इस शुद्ध हृदय के साथ जब ये शुद्ध हृदय वाले भक्तों की प्रार्थनाएं जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। तो एक व्यक्ति की सर्वोच्च स्थिति है, सर्वोच्च जो भाव है उसके हृदय में छिपा रहता है। हालांकि ऊपर रूप से वो टाई सूट बूट वगैरह पहन सकता है, जेब में बहुत सारे पैसे रह सकते हैं, ऊपर सोने का ताज भी रह सकता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो चीज है उसका हृदय होता है भगवान के अनुसार, और विशेषतः भक्ति भावना में वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए प्रभुपाद एनुआ में कहते हैं कि एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। व्यक्ति की मनोभावना क्या है उससे समझ में आता है कि वो कहाँ है भक्ति में। तो यहाँ पर प्रहलाद जी का हृदय हमें प्रकट हो रहा है। तो आचार्यगण भी बताते हैं कि हमें इन प्रार्थनाओं को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए बार बार, और इसको ही दोहराना चाहिए। हालांकि हम अपनी भी प्रार्थनाएं अर्पण कर सकते हैं, जैसे 64 जो भक्ति के अंग है उसमें श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि हम अपनी भी हृदय की बात भगवान को बता सकते हैं। लेकिन और भी अधिक अच्छा रहेगा अगर हम जो पहले के महान भक्त हैं उनकी प्रार्थनाओं को भगवान के सामने प्रकट करें, हालांकि टूटी फूटी भाषा भी क्यों ना हो, हमें ठीक से आए भी नहीं, कुछ भी बोल दे थोड़ा इधर उधर, लेकिन थोड़ा भी कुछ वो भाव आ जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा दयो सुरगणा भगवान के सामने प्रार्थना करते करते हम भूल भी गए तो जैसे हम शुरू करेंगे ब्रह्मा दयो सुरगणा, भगवान बोलेंगे कौन है वो, प्रहलाद, प्रहलाद, ये प्रहलाद नहीं, ये तो कोई आ रही है। तो नहीं ठीक है चलो प्रहलाद की प्रार्थनाओं को अर्पण कर रहे हैं ना तो थोड़ा सुनता हूँ। भगवान अधिक प्रसन्न हो जाएंगे जब हम पहले के भक्तों की प्रार्थनाओं का अर्पण करेंगे। और उससे भी अधिक श्रेष्ठ है अगर हम वैष्णव गीतों को दोहराएं, क्योंकि एक एक वैष्णव गीत में, एक एक लाइन में, एक एक शब्द में हजारों शास्त्रों का समन्वय हुआ है। जो शास्त्र बहुत सारी श्लोकों में बोल रहे, करोड़ों श्लोकों में, वो एक एक लाइन में, एक एक शब्द में प्रकट होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर और विशेषतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं को हम बार बार भगवान के सामने प्रकट करें। और फिर भी इसके बावजूद भी अगर हमारे हृदय में कुछ आता ही नहीं, न तो मैं श्लोक याद कर सकता हूँ, न तो वैष्णव गीत के भी कुछ लाइन याद आते हैं, मैं तो बड़ा ही अभागा हूँ, बड़ा ही मेरा मंद सुमंद मतयो, ऐसा अगर आपको लगता है, हमें लगता है, तो हम जोर से पुकार सकते हैं एक प्रार्थना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इन 16 शब्दों में समस्त जो शास्त्र है, भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, ये सब एक में आया है। हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, जैसे उस दिन राजेश प्रभु कह रहे थे कि न तो सभी लोग मुझसे आते हैं लेकिन सभी चीजें भी चीजें, लोक, लोग सब मुझसे ही आता है, इसके बाहर कुछ रहता नहीं। और वो भगवान जो सबके ऊपर है, उनके समान कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं, वो भगवान पूरी तरह से प्रकट होते हैं इस हरि नाम में। तो ये सर्वोच्च प्रार्थना है, उसको हम अर्पण करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे महान भक्तों की जो प्रार्थना है, हालांकि तात्विक रूप में रह सकती है, लेकिन फिर भी उसको हमें जरूर पढ़ना पसंद करना चाहिए, सुनना पसंद करना चाहिए, दोहराना पसंद करना चाहिए। तो प्रहलाद जी की नम्रता यहाँ प्रकट होती है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि एक जो वैष्णव होते हैं, जो पूरी तरह से पात्र होते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, वह अपने आप को बहुत ही एक्सट्रीमली लो, बहुत ही दीन मानते हैं। तो जितना हम अपने आप को दीन हीन मानेंगे और भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, तो उतना भगवान में और हम में अंतर बहुत बढ़ जाएगा। तो उसके कारण भगवान का हमारे प्रति आकर्षण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। भगवान हमारे प्रति आकर्षित हो जाएंगे जब हम अपने आप को बहुत ही दीन हीन न तो प्रकट करें, न तो फिर भी महसूस भी करें कि मैं बहुत ही दीनहीन हूँ। और हम देख सकते हैं कि कितने हम दीनहीन हैं। अभी हम ये दरवाजा छोड़कर दरवाजा के बाहर जा भी नहीं सकते तो लॉकडाउन है। एक तो मंदिर के भक्त रोकेंगे, नहीं तो फिर गवर्नमेंट रोकेगा, क्यों क्यों आए आप बाहर, अंदर चले जाओ। तो हम कुछ कर सकते नहीं, हिल सकते हैं ना ढिल सकते हैं, इसलिए तो कहते हैं ना तो एक भी पत्ता हिलता नहीं, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। एक घास का तिनका भी हिलता नहीं भगवान की मर्जी के खिलाफ। तो देख सकते हैं अभी हम हिल नहीं सकते जहां है वहां है, तो वही रहना है जब तक भगवान अगली आदेश न दे दे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जगाई मदाई है मोही से पापिष्ट, पूरी शेर कीट है मोही से लगिष्ट। जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि मैं जगाई और मदाई जो इतने पापी थे उनसे भी अधिक पापी हूँ, और जो विष्ठा में पड़े कीड़े हैं उससे भी मैं अधिक घिनौना हूँ। तो ये तो शायद ही कोई भक्त होंगे जिन्होंने विष्ठा में पड़े हुए कीड़े को देखे होंगे, एक कीड़े को भी देखा होगा, मैंने देखे हैं। इसके लिए गोकुल धाम जाना होगा जो जंगल में उनके टॉयलेट्स है, तो उसमें दिखाई देते हैं बहुत सारे। तो उनको देख के इतना एक तरीके से अंदर से भाव आता है कि क्या है, देखना नहीं चाहिए, कितने ये कीड़े कैसे उसमें रेंग रहे हैं। तो बहुत ही नीचे का भाव आता है कि ये बहुत नीचे है और मैं बहुत ऊपर हूँ। लेकिन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं उन कीड़ों से भी नीचे हूँ। तो ये एक महान भक्त का भाव होता है, और ऐसे भाव से ही भगवान आकर्षित होते हैं। इस भौतिक संसार का भाव है कि मैं सबके ऊपर हूँ, लेकिन आध्यात्मिक संसार का भाव है मैं सबसे नीचे हूँ। Nobody is equal to me, nobody is lower than me. ये आध्यात्मिक संसार है। और इस संसार का भाव है nobody is equal to me, nobody is greater than me. मेरे समान कोई नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं, ये इस भौतिक संसार का भाव है। तो आध्यात्मिक ये भौतिक संसार में हम पाले पोसे गए, यही हमारा शिक्षण संस्था में हम पढ़े, तो इसमें ये भाव आ गया कि मेरे समान कोई नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं। और जब भक्ति में आए तो अभी बताया जा रहा है कि मेरे समान कोई नहीं, मेरे नीचे कोई नहीं, सब मेरे ऊपर ही है। तो बहुत पोल्स अपार्ट जाना है। कुछ पंछी होते हैं जो नॉर्थ पोल से उत्तर के ध्रुव से नॉर्थ साउथ की तरफ जाते हैं, इतना लंबा अंतर वो महीनों में काट देते हैं। तो हमें भी वो अंतर काटना, उससे भी करोड़ों गुना अधिक अंतर काटना है, क्योंकि ये अंदर की बात है, भाव को बदलना है। ऊपर से तो हम भी नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा सकते हैं, लेकिन ये भाव को अंदर बदलना नामुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन है सिर्फ एक ही स्थिति से, जब हम वैष्णव के साथ में रहकर भक्ति का पालन करें। तो ये वैष्णव के संग में ही हमें ये भाव आएगा कि मैं मेरे समान कोई नहीं और मेरे नीचे कोई नहीं, सब हर कोई मेरे ऊपर ही है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वन शुड नॉट बी फॉल्सली प्राउड ऑफ हिज वैष्णव क्वालिफिकेशंस। हम जब अपने आप को मानते हैं हम वैष्णव है, तब हम वैष्णव नहीं होते, मिश्र भक्त हो जाते हैं, या भौतिकवादी बन जाते हैं, या अपराधी बन जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक वैष्णव हूँ, मैं वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद हालांकि भक्तों का गुणगान भी करते थे, लेकिन एक बार बोले भी थे वो, यहाँ कौन वैष्णव है, यहाँ कोई वैष्णव नहीं, सिर्फ एक ही है, मैं ही हूँ, और कोई वैष्णव नहीं है इधर। प्रभुपाद लिखते हैं कि वैष्णव यानी शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त। सो हम शुद्ध भक्त नहीं, प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, महाजनो ये न गतः सपंत, ऐसे महान शुद्ध भक्तों के पदचिन्हों पर हम चलने का प्रयास करें तो ये हमारे लिए उचित रहेगा। अंतिम लाइन में प्रभुपाद कहते हैं, अनलेस वन इज मीक एंड हम्बल टू मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। जब तक हम अपने आप को बहुत ही दीन हीन न माने, तब तक भक्ति में प्रगति करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये झुकने का मार्ग है, इसलिए पंचांग प्रणाम में हम झुकते हैं, अष्टांग प्रणाम में झुकते हैं, इतनी बार झुकते रहते हैं दिन भर। जैसे वो हिंदी गानों में कहते हैं, हिंदी दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो प्रभुपाद है वो जो हमें झुका रहे हैं, क्योंकि वो खुद झुके, नहीं तो कौन झुकेगा। उन्होंने अपने इतने उम्र में भी, 70-80 साल की उम्र में भी इतने झुकते रहे भगवान के सामने। तो इसलिए उनको देखकर, उनकी वचनों को सुनकर हम भी अभी झुक रहे हैं। लेकिन ऊपरी रूप से शरीर से तो झुका जा सकता है पंचांग प्रणाम के द्वारा, लेकिन मन को भी झुकाना चाहिए। हम काफी बार भक्तों के संग में मन को नहीं झुकाते, तो हम क्या कहते हैं, अपने ही प्लेजर के अनुसार जाते हैं। माय प्लेजर इज द ओनली प्लेजर, बाकी भक्तों का प्लेजर, उनका जो उनको किस में अच्छा लगता है वो हम सोचते नहीं। तो इस तरह से हम मन से पंचांग प्रणाम या अष्टांग प्रणाम नहीं कर रहे, अपने ही मनमाने ढंग से जा रहे, या फिर अपने बुद्धि को नहीं झुकाते। तो बुद्धि के अनुसार यू आर करेक्ट, आई एम रॉन्ग, तो ये भावना आती नहीं। आई एम ओनली करेक्ट, एवरीबडी एल्स इज रॉन्ग, मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। तो इस तरह से हम बुद्धि के द्वारा भी पंचांग प्रणाम या अष्टांग प्रणाम अर्पण करने में असफल हो जाते हैं। और मिथ्या अहंकार के स्तर पे तो कहना ही क्या, आप स्वामी मैं मालिक, ये मैं दास, ये भावना आती नहीं। मैं ही स्वामी बाकी सब दास, ये भावना जब तक है तब तक हमें दीनहीन भाव नहीं आया है, नम्रता नहीं आई है, तो इसलिए भक्ति में प्रगति करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ समय के बाद देखते हैं हम ये भाव चला जाता है। शुरुआत में आते सभी भक्त उससे महान है, सभी को दंडवत करते रहते हैं, कौन दीक्षित कौन दीक्षित नहीं ये पता भी नहीं रहता, और वो सोचते भी नहीं, हम सब मुझसे महान है, सबको दंडवत करते। लेकिन जैसे जैसे प्रगति करते हैं तो इतनी प्रगति कर लेते हैं कि ये पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि कुछ गिने चुने भक्त हैं जो मेरे समान है या मेरे ऊपर है, बाकी सब तो नीचे ही है। और बाद में इतनी अधिक प्रगति हो जाती कि मुझसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, एक दो समान है मेरे वो भी चले जाएंगे। तो इस तरह से असत्संग के कारण हमारे मन में कुछ कलुषित भावनाएं आ जाती है, और फिर भक्ति में प्रगति करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर माला खींचने में बहुत परिश्रम होता है, एक एक मणि को खींचना, यानी महागढ़ ये क्या है, माउंट एवरेस्ट भी इससे हल्का होगा शायद, उसको भी मैं हिला दूं, ये मणि क्यों नहीं हिल रहा है। और ये हिले भी तो बाद में वो माला ही गिर जाती है बिड़बैग में, क्योंकि भाव गलत हो गया है, एटीट्यूड मनोभावना। तो इसलिए नम्रता की भावना हम नम्र भक्तों के बीच में उनकी सेवा कर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रहलाद ने की। प्रहलाद के बारे में जैसे कल बताया गया था, परसों शायद कल, कि कैसे वो जब उनको पूछा गया कि बताओ क्या आपने शिक्षकों से क्या सीखे तुम स्कूल में, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि शंड अमर करके स्कूल से क्या सीखा, उनसे क्या सीखा, वो तो एक ही गुरु जानते थे, नारद मुनि, उनके आश्रम में उनके गुरुकुल में था मैं माँ के गर्भ में, और तब मैंने सीखा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और उसी को उन्होंने दोहराया। तो वो उनके साथ ही अपना संबंध सोचते थे, ना तो शंडा अमरका के साथ, शंडा अमरका के प्रति ऊपर से उनका मान सम्मान चालू था, लेकिन उनके भाव को, उनके वचनों को उन्होंने अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया, वो सिर्फ नारद मुनि के वचनों को ही उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए उसको ही दोहराया। इसलिए हम अपने मन में किन भक्तों को आश्रित आश्रय लिए है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसे भक्तों का आश्रय लिए है जो दूसरों का अपराध करने में बहुत आनंद लूटते हैं, तो फिर हमें भक्ति में बहुत बाधा आ जाएगी। आश्रय लिया भजे तारे कृष्ण ना ही त्यजे, जो आश्रय लेकर भगवान का भजन करता है उसको भगवान कभी त्यागते नहीं, कितना भी उससे गलती क्यों ना हो जाए, कितना भी ब्लंडर, कितना भी उससे महान से महान पाप भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जो आश्रय लेकर वो भजन करता है भगवान छोड़ते नहीं। और भगवान का आश्रय लेना यानी भगवान के महान भक्तों का, उनकी वाणी के अनुसार जो चल रहे हैं ऐसे भक्तों का आश्रय लेना होता है, तो उनका आश्रय लेना चाहिए, न तो जो अपराध लेने में आनंद लूटे उनका। तो हम प्रहलाद के इस भाव को दंडवत कर सकते हैं। तो ये जो भाव है उनका हृदय है, और ये हृदय ही प्रहलाद है जिसके कारण भगवान प्रकट हुए हैं। तो ऐसे भाव को दंडवत करना चाहिए जिससे कि हम भक्ति में प्रगति कर सकें। तो ये बहुत ही बढ़िया श्लोक है। फिर आगे वो कहते हैं 9वें श्लोक में, ये दूसरा श्लोक है उनका, उसमें कहते हैं, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति, राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या, शिक्षा, दक्षता, कांति, प्रभाव, शारीरिक शक्ति, उद्यम बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों ना हो, किंतु मेरी समझ से इन सारी योग्यताओं से भी कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि क्योंकि किंतु भक्ति से वह ऐसा कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसे किया और इस तरह भगवान उससे प्रसन्न हो गए। तो हम देख सकते हैं कि हमें काफी इन चीजों से काफी शक्ति प्राप्त होता है। ये जो एक एक चीज बताई गई संपत्ति, तो जो भी हमारे पास संपत्ति होती है, ब्रह्मचर्य के पास लॉकर होता है और लॉकर में इतनी सारी चीजें रहती है, तो हम सोचेंगे मैं कितना महान हूँ, क्या क्या चीजें हैं मेरे पास। मेरे पास ऑफिस है, मेरे पास कार है, मेरे पास टू व्हीलर है, मेरे पास सेपरेट डिपार्टमेंट है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम समझ सकते सोच सकते हैं कि मैं मेरे पास संपत्ति है। तो इस संपत्ति से हम बहुत शक्ति महसूस करते हैं। तो ये शक्ति महसूस कर रहे हैं हम, ये भौतिक शक्ति है, ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति ये भौतिक चीजों से नहीं आती, राजसी परिवार, सौंदर्य, तपस्या, और ये सब चीजें ऐसी है, हियर टुडे गॉन टुमारो, आज यहाँ है कल नहीं रहेगी। विशेषता जो हम बहुत पढ़ लिख कर आते हैं भौतिक संसार से, तो बहुत घमंड चढ़ जाता है अपने बुद्धि के ऊपर, लेकिन ये बुद्धि कभी भी जा सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि वो एक ऐसे भक्तों को जानते थे कि गाने में बहुत ही सुंदर उनका कंठ था, बहुत मशहूर था, ऐसे कीर्तन करते थे मानो सब संसार उस पे नाच खड़ा हो जाए। लेकिन ऐसे कुछ साल बीते और एक बार गाते गाते अचानक उनका कंठ में से आवाज ही निकलना बंद हो गया। तो बड़े हैरान हो गए, जोर से चिल्लाने का प्रयास किया, कुछ आवाज ही नहीं निकला। और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले संभव नहीं, अपने आवाज को आप खो बैठे हैं, कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो सालों साल बीत गए और उसमें वो जो भक्त था उनको बड़ी नम्रता आ गई, उनको समझ में आ गया कि ये मेरा मेरी कुछ हैसियत नहीं थी, ये भगवान का कमाल था, भगवान मेरे कंठ के द्वारा कार्यान्वित हो रहे थे। तो बाद में कुछ सालों के बाद उनका आवाज़ फिर से आ गया, तो फिर भी नम्र रहे वो, क्योंकि वो सीख गए कि मेरा कुछ नहीं है। तो कभी कभी जो हम शास्त्रीय ज्ञान भी ग्रहण करते हैं, इतना सारा अध्ययन करते हैं, भगवद्गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, बहुत सारे श्लोक जानते हैं, बहुत सारे तत्वज्ञान जानते हैं, तो इसके कारण हो सकता है कि इसके कारण भी घमंड आ जाए। तो मैं एक प्रवचनकार से सुन रहा था, वो कहे कि जो शास्त्रीय ज्ञान है इससे कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त होती। वो बताएगा ज्ञान आपको कि कृष्ण की कृपा है क्या। शास्त्रिक नॉलेज विल नॉट गिव यू मर्सी ऑफ कृष्ण, बट विल टेल यू व्हाट द मर्सी ऑफ कृष्ण इज। शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा भगवान की कृपा नहीं आएगी, वो बताएगा भगवान की कृपा है क्या। तो कब आएगी, कब आएगा वो शास्त्रीय ज्ञान, फिर जब हम भक्तों को अर्पण हो जाएंगे, भक्तों के प्रति शरणागति प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, ये तीन चीजें नहीं है। प्रणिपात नहीं कर रहे, सबमिसिव नहीं है, प्रश्न तो कर रहे लेकिन उसके बाद सेवा नहीं कर रहे, तो बड़ी समस्या हो जाएंगी। इसलिए प्रभुपाद आदर्श उदाहरण है हमारे लिए। पहले बार हम जानते हैं कैसे उनका अपने गुरु महाराज के साथ थोड़ा वार्तालाप हुआ कि देश स्वतंत्र हो जाए, फिर हम सब भक्ति का प्रचार प्रसार करें। लेकिन भक्तिदान ठाकुर ने तो उनको पूरी तरह से पराभूत कर दिया और ये साबित कर दिया कि ओनली प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, संसार में एक ही समस्या है, वो है कृष्ण भावनामृत की कमी, और एक ही उपाय है, वो है कृष्ण भावना। तो प्रभुपाद पूरी तरह से समझ गए और उधर ही शरणागत हो गए, अपने आप को भक्तिदान ठाकुर के शिष्य मान लिए। अगले बार से जब भी मिलते थे एक ही प्रश्न रहता था, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी क्या सेवा करूँ, बताइए, मैं आपका दास हूँ। हालांकि दीक्षित नहीं थे, दीक्षा होने के लिए और 11 साल लगे, लेकिन हर बार यही प्रश्न था कि कैसे सेवा करूँ। और जैसे ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर चाहते थे उस तरह से वो तो सेवा कर ही रहे थे, उससे भी अधिक कर रहे थे, इसलिए भक्तिदान ठाकुर को बहुत ही वो प्रिय हो गए। तो एक अन्य प्रवचनकार बता रहे थे कि ज्ञान जो है ये पुरुष प्रकृति है, इसलिए हो सकता है वो माया प्रकृति की तरफ आकर्षित हो जाए। जैसे एक पुरुष होता है, हो सकता है स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाए। पुरुष पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं होगा उतना, या स्त्री स्त्री के प्रति नहीं आकर्षित होगी, लेकिन पुरुष स्त्री के प्रति स्वाभाविक रूप से या काफी बार देखा जाता है कि आकर्षित हो जाता है। तो जो ज्ञान है वो पुरुष प्रकृति होने के कारण हो सकता है वो माया की प्रकृति की तरफ, माया प्रकृति की तरफ आकर्षित हो जाए, क्योंकि माया एक फीमेल है। लेकिन भक्ति जो है वो फीमेल है, राधा रानी, तो इसलिए वो दुर्गा के प्रति, माया शक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होगी। तो इसलिए सेवा भाव से अहंकार कम होता है, इसलिए सेवा करनी चाहिए। इसलिए हम भक्तों से ही प्रार्थना करते हैं कि कृपया सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। हो सकता है भक्त हमें बार बार सेवा न दे पाए, रात में क्या सेवा देंगे 12 बजे 1 बजे, तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी आपको सेवा दे सकते हैं, हर क्षण सेवा दे सकते हैं, और उसकी ही मांग कर रहे हैं हम भगवान से हरि नाम के द्वारा, कृपया मुझे आपकी सेवा में लगाइए। मैं तो बस अपने ही शरीर, अपनी ही बुद्धि, मन, अहंकार की सेवा में लगा हुआ हूँ करोड़ों जन्मों से, लेकिन ये सब से मैं बड़ा तंग आ चुका हूँ, बड़ा परेशान हो गया हूँ, घुटनों के बल अभी सर फोड़ रहा हूँ जमीन के ऊपर। बस आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आपकी सेवा में लगाइए। तो एक दूसरे प्रवचनकार बता रहे थे कि ज्ञान के द्वारा हो सकता है व्यक्ति स्वार्थी बन जाए, उस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर न करे, तो ये खतरा हो सकता है ज्ञान के साथ। इसलिए वैराग्य की भी जरूरत होती है कि ठीक है भाई, ये ज्ञान मेरे लिए नहीं, दूसरों को भी देना चाहिए, ना तो मैं क्रेडिट लूं, लो उनको भी क्रेडिट लेने दो, ना कि बस यू नो ये सुंदर श्याम दास संहिता से है और किसी मैं बताऊंगा नहीं कहां से, ये जो श्लोक बताया, ये जो तत्व ज्ञान बताया वगैरह, ऐसा नहीं। तो ये जो ज्ञान और वैराग्य है ये दोनों भक्ति के पुत्र है। तो भक्ति के द्वारा जो ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है उसमें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन जब भक्ति के अलावा हम ज्ञान ग्रहण करेंगे किसी भी शास्त्रों से या करोड़ों शास्त्रों से, तो बड़ा अहंकार चढ़ सकता है, स्वार्थ आ सकता है। जैसे वो बताते थे कि पुरुष प्रकृति माया प्रकृति से फिर आकर्षित होने के कारण फिर रजोगुण और तमोगुण उसमें समा जाएगा, बहुत जल्दी समा जाएगा, और फिर हम देखते हैं कि वो भौतिक मंडेन गुडनेस हो गया, भौतिक सत्वगुण हो गया, जिसमें हमेशा रजोगुण और तमोगुण के कभी भी बीज बोए जा सकते हैं, बीज और कभी भी वो अंकुरित हो जाएंगे। लेकिन भक्ति के द्वारा तो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके द्वारा कभी भी अहंकार नहीं आएगा और उसमें वैराग्य तो जरूर रहेगा। तो इसलिए भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। वही अगले श्लोक, यही श्लोक में बताया गया है कि एकमात्र वन कैन सैटिस्फाई द लॉर्ड सिंपली बाय डिवोशनल सर्विस। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और गजेंद्र, उसका क्या जाति था, वो तो पशु था, और उसका क्या ज्ञान था, वो तो तमोगुण से भरा हुआ था, और शक्ति थी ऊपरी रूप से, लेकिन उस स्थिति में जब वो घड़ियाल के द्वारा पकड़ा गया तो उसकी शक्ति का भरा पूरा रास हो गया, दिन प्रतिदिन, माह प्रतिमाह, साल प्रतिसाल, वो तो पूरा शक्ति खोता बैठा, और ऐसी स्थिति में कोई उसको मदद कर नहीं पाया। लेकिन भगवान की भक्ति जो पूर्व जन्म में की थी उन्होंने इंद्रदुम्न राजा के रूप में, और इस स्थिति में भी उन्होंने जो भगवान को कमल अर्पण किया, तो वो भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर पाए, और भगवान वैकुंठ से श्री हरि भगवान प्रकट हो गए और उनको उन्होंने बचा लिया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि नो काइंड ऑफ मटेरियल क्वालिफिकेशन इज द मींस फॉर सेटिस्फाइंग द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कोई भी जो भौतिक पात्रता है उसके द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यहां तक कि हमारे जो भी कुछ टैलेंट है, हम में से कुछ लोग अच्छे गा सकते हैं, कुछ लोग अच्छे करताल बजा सकते हैं, मृदंग बजा सकते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारे टैलेंट भौतिक है, लेकिन जब भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में उनको प्रसन्न करने के लिए जब लगाते हैं तब वो आध्यात्मिक बन जाते हैं, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। नहीं तो बाहर के संसार में हमसे बहुत अधिक ज्यादा पावरफुल, ब्यूटिफुल और एक्सपर्ट लोग हैं जो करताल बजा सकते हैं, मृदंग बजा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें तो आलाप विलाप में हमारा जीवन चला जा रहा है, लेकिन वो तो हमसे बहुत करोड़ों गुना अधिक मशहूर है, अधिक सक्षम है। लेकिन हमारी पात्रता क्या है, हमारे जो अंदर जो भी कुछ है हम जानते हैं भगवान के देन है, और भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास है भक्तों के मार्गदर्शन के अनुसार, फिर वो भक्ति कहलाई जाती है। तो इसलिए मनमानी नहीं करनी चाहिए। अनलेस द लॉर्ड इज प्लीज्ड बाय द सर्विस ऑफ अ डिवोटी द लॉर्ड डज नॉट रिवील हिमसेल्फ। जब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तब तक भगवान हमें अपने आप को प्रकट नहीं करवाएंगे। तो इसलिए भगवान की भक्ति, भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है, भक्ति ही भगवान को एकमात्र प्रसन्न करने का, क्योंकि भक्ति है कौन, श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्णाकर्षणी। तो भगवान और भक्तों के बीच में भक्ति होती है तभी भगवान आकर्षित होते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान के सामने जाके बोलेंगे भगवान आ गया मैं आपका भक्त, तो भगवान बोलेंगे गेट लॉस्ट, गेट आउट ऑफ हियर, नम्र होके, क्योंकि वो जो नम्रता है वो श्रीमती राधा रानी को प्रदर्शित करता है। तो श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, उसके पहले कहते हैं लादिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन। जो लादिनी शक्ति है भगवान की वो कृष्ण को आनंद देती है, आस्वादन करवाती है आनंद का। लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, और भगवान भी क्या करते हैं, इस लादिनी शक्ति के द्वारा ही भक्त को आप पोषण करते हैं। तो भगवान और भक्त के बीच में लादिनी शक्ति होनी ही चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो भक्ति नहीं है, फिर वो समस्या हो जाती है, फिर वो ज्ञान का गर्व हो जाता है, अहंकार हो जाता है, स्वार्थ हो जाता है, करोड़ों उसमें समस्या हो जाती है। तो इसलिए भक्त और भगवान के बीच में भक्ति होनी ही चाहिए, राधा रानी होनी ही चाहिए, तभी वो प्रीति लक्षणम, षडविधम प्रीति लक्षणम क्या है, उसमें श्रीमती राधा रानी बीच में है। भगवान को अर्पण किया प्रसाद, अंततोगत्वा किसने किया, राधा रानी ने किया, तो वो प्रसाद जो राधा रानी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है हम भक्तों को देते हैं, भूंगते भोजते चाहे वो, तब वो प्रीति लक्षणम हो जाता है। ये तो बाहर के संसार में भी चलता रहता है, लेकिन उसमें बड़ा स्वार्थ होता है और उससे फिर बाद में लोग एक दूसरे को मारने भी तोलते हैं। लेकिन यहाँ ये जो लक्षण है इसमें भक्ति है, तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये प्रहलाद जी को पूरी तरह से पता है, इसलिए भगवान प्रकट हुए हैं। तो आगे वो कहते हैं अगले श्लोक में कि जो वो कहते हैं, यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताओं सनत सुजात ग्रंथ में उल्लिखित हो, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चांडाल भक्त से भी अधम है जिसने अपना सर्वस्व मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता, अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। तो हम देख सकते हैं कि भक्त जो है ब्राह्मणों के भी ऊपर है, तो भक्त को ब्राह्मण बनने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण दीक्षा के लिए जो भक्तों को प्रसन्न करती है, जिसके द्वारा भगवान की सेवा होती है, जरूर प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हूँ, नहीं, मैं सबसे हीनी हूँ, लेकिन अपने आप भगवान कर देते हैं ये सब, एक भक्त को करोड़ों ब्राह्मणों के ऊपर कर देते हैं, जैसे यहाँ बताया जा रहा है प्रहलाद जी के द्वारा, कि कोई चांडाल भी हो, चांडाल परिवार में, यानी कुत्ते का मांस खाने वाला जो परिवार है, ऐसे परिवार में जिस बच्चे का जन्म हुआ है और जो खा चुका है कुत्ते के मांस को, लेकिन अगर भगवान का नाम ले रहा है, भक्ति कर रहा है, तो करोड़ों ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। ऐसे ब्राह्मण जिनमें 12 गुण है और एक है जैसे ज्ञान है, उनमें बहुत सारा सहनशीलता है और बहुत बुद्धिमान है, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, 12 गुण बताए गए उनके, लेकिन उसके द्वारा वो अपने आप का उद्धार भी नहीं कर पाते। जैसे हम देखते गोपाल चापल, जिन्होंने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध कर दिया, तो वो उनको जो बाद में जो कोड़ों की बीमारी हो गई, तो उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाए, क्या पात्रता रही उनके जो ब्राह्मणत्व था उसके द्वारा, वो उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। अंततोगत्वा जब भक्त बने वो, एक भक्त के आश्रय में गए वो, यहां तक कि भगवान के पास भी गए, तो भगवान ने उनको कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे तुम्हें करोड़ों जन्म ये कोड़ों की बीमारी रहेगी। तो फिर वो आ गए सामने, उनको बोला श्रीवास ठाकुर ही आपको माफ करे तो हो सकता है। तो श्रीवास ठाकुर के चरणों में जैसे ही गिर गए, उन्होंने तो उनको उठाकर गले ही लगा लिया। देख सकते कैसे भक्त होते, हमारे सामने कोई कोड़ों वाला व्यक्ति आ जाए, विशेषता जिसने हमारा अपराध किया है, द्वेष किया है, उससे हम दूर भाग जाएंगे, उसका दंडवत भी नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं चाहिए तुम्हारा दंडवत, निस्वार्थी बन जाएंगे हम, और उसको गले लगाना तो रही दूर की बात। लेकिन श्रीवास ठाकुर महान भक्त है, उन्होंने उनको गले लगाया और बस उनको माफ कर दिया। तो भक्त का आश्रय लेने से वो ब्राह्मण गोपाल चापल वो आ गया बाहर उस स्थिति से, वैसे ही गोपाल चक्रवर्ती का भी स्थिति हो गया था, उसका नाक गल गया, उसकी सुंदर उंगलियां गल गई, क्योंकि उन्होंने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध कर दिया, और हरिदास ठाकुर का कुछ दोष था भी नहीं, उन्होंने तो समस्त शास्त्रों का निचोड़ बस बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया था, लेकिन इन्होंने तो बड़ा अपराध कर दिया, तो फिर उनको बड़ा समस्या हो गया, तो इसके कारण फिर उनको भगवान माफ नहीं कर रहे थे। तो हरिदास ठाकुर ने जब माफ किया तब तो उससे वो बाहर आ सके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भक्तों को शरण जाना चाहिए, न तो ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मण बनना ये तो स्वाभाविक है, जिसके पास जैसे 1000 रुपये का नोट है उसके पास 500 रुपये तो है ही, 10 रुपये तो है ही, 20 रुपये तो है ही। तो इस तरह से जो वैष्णव बन गया उसमें ब्राह्मणत्व अपने आप से आ जाता है। जैसे ये ब्राह्मण होते हैं उनको स्मार्ट ब्राह्मण कहते हैं संस्कृत में, इंग्लिश में इसे स्मार्ट शब्द है, स्मार्टफोन, ऐसा फोन जिससे आप पूरे संसार को हिला सकते हैं, ऐसे उनकी समझ होती है, इसलिए उसको स्मार्टफोन कहते हैं वो। तो फिर वो सोचते हैं कि वो बस सबसे महान है, तो लेकिन अगर हम अभी भी सोचते हैं कि मैं किसी से श्रेष्ठ हूं, तो बस तुरंत हम भक्ति से नीचे गिर जाते हैं, जो पद पे जो ऊपर स्थिति प्राप्त हुई थी उससे नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि अहंकार ये रजोगुण में तमोगुण में है, लेकिन जो नम्रता है वो सत्वगुण में है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयेन शोभते। तो जब हम भक्तों के द्वारा भक्ति के मार्ग से जब ज्ञान ग्रहण करते हैं, वैराग्य आता है, उसके द्वारा कभी अहंकार नहीं चढ़ता। लेकिन अन्यथा फिर व्यक्ति सोचता है मुझ में कितना ज्ञान है, मैं कितना वैरागी हूँ। तो जब हम उपवास करते हैं एकादशी के दिन, निर्जल एकादशी को भी तो देखना चाहिए कि कभी हम ऊपर से फास्टिंग, कहीं अंदर से मिथ्या अहंकार के ऊपर फिस्टिंग तो नहीं कर रहे। ऐसा है तो उचित रहेगा कि वो साबुदाना वड़ा खा ले वो हजम होके जो मिथ्या अहंकार है वो भी विष्ठा के रूप में बाहर चला जाए, अन्यथा वो विष्ठा के रूप में मिथ्या अहंकार को खा जाए और साबुदाना वाड़ा हमारे प्लेट में भी ना आए, तो बहुत गंदी चीज हो जाएगी। तो भक्ति में प्रगति करना ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है, भक्तों को भगवान को प्रसन्न करना, न कि इस मिथ्या अहंकार के स्तर पे डटे रहना। तो आगे कहते हैं जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानम जनादविदुषः करुणो वृणीते यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुख श्रीः। तो इसमें प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवत कृपा से यह भेंट भक्त के लाभ के लिए ही होती है, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ तो यदि किसी का मुख सुसज्जित हो तो दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिंब भी सुसज्जित दिखता है। तो तत्व के रूप में देखा जाए तो भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, रस के रूप में वो हमारे पिता है, तो हमारे साथ आनंद का आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने हमें प्रकट किया है। लेकिन तत्व के रूप में तो ये सही है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवे मानव, लाखों करोड़ों लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी है, और वो क्या क्या पकवान बनाती है, क्या क्या सुंदर चीजें बनाती है, वो खुद भी सुंदर है, सब कुछ उनका सुंदर ही सुंदर है। और ऐसे लक्ष्मियां भगवान की सेवा में, एक एक लक्ष्मियां हम जैसे करोड़ों भक्त एक लक्ष्मी का साथ मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन भगवान फिर भी हमसे प्रेम करते हैं जब हम उन लक्ष्मी के द्वारा, उस राधारानी, उन राधारानी के द्वारा, उस भक्ति के माध्यम से जब भगवान को पेश आते हैं उनके असिस्टेंट के रूप में, सहायक के रूप में, तब भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो भक्ति के द्वारा हमारा ही लाभ हो रहा है, जैसे देवताओं की जब पूजा अर्चना की जाती है किसी देव पूजक के द्वारा, उनके आज पुजारी, उनके जो भी है आराधक, तो उसके द्वारा दोनों को लाभ होता है, वो आराधक को भी और आराधना जिसकी हो रही है, आराध्य देव, दोनों को लाभ होता है। लेकिन दोनों का लाभ भौतिक है, तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दू, वो दू। तो जब देवताओं का आराधना करता है कोई, तो उसको जो भी चाहिए, धन संपत्ति, बच्चे, पत्नी, सब मिल जाता है जो भी उसने आराधना मांगी थी, और जो देवता है उनको भी शक्ति प्राप्त हो जाती है उसके द्वारा, क्योंकि उनकी पूजा अर्चना की गई। लेकिन दोनों का भौतिक ही गेन हुआ, भौतिक एक चीज उनको प्राप्त हुई। लेकिन भक्ति में वैसा नहीं है, भक्ति में जब भक्ति कर रहे हैं तो हमारा लाभ हो रहा है। जैसे यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दिया जा रहा है, जब हम व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा सुशोभित करता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अपने आप ही सुंदर दिखाई देता है आईने में। तो उसी तरह से जब हम भगवान को भक्ति अर्पण करते हैं तो हम जो उनके प्रतिबिंब के रूप में है तो हम भी प्रसन्न हो ही जाते हैं। जैसे जीसस कहते हैं बाइबल में, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, तो आदमी को भगवान के प्रतिकृति के रूप में बनाया गया है। तो भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हम प्रसन्न हो ही जाएंगे। तो हमारी जो भी शक्ति है, जो भी कुछ ज्ञान है, जो भी कुछ है हमारे पास, वो सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। धन नहीं, धन हो, ज्ञान हो, बल हो, नहीं तो फिर हम धन कपटी बन जाएंगे, बल कपटी बन जाएंगे, क्योंकि धन है लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, बल है लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, ज्ञान है लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, तो फिर कपटी हो जाएगा। तो कपटी नहीं बनना चाहिए, भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। आगे वो कहते हैं 12वें श्लोक में, अतएव यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है तो भी निसंदेह जहां तक मेरी बुद्धि जाती है मैं पूरे प्रयास से भगवान की प्रार्थना करूंगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है वो भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वो भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। तो पहले तो वो कह रहे थे कि मैं कैसे भला प्रार्थना अर्पण करूं, लेकिन अभी इस श्लोक में हम देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि भगवान को प्रार्थना अर्पण करने से जो प्रार्थना अर्पण करने वाला है उसको बड़ा लाभ होगा, तो इसलिए मैं जरूर भगवान की प्रार्थना करूंगा, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। तो हम देख सकते हैं भगवान के भक्तों के भाव कैसे होते हैं, भक्ति के लिए जो भी अनुकूल है वो करने के लिए भक्त तैयार होते हैं, तो उसको ही भक्ति कहते हैं, उसको ही शरणागति कहते हैं, कि अनुकूल्यस्य संकल्प, तो उसके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जैसे हम देखते हैं उनके जीवन में, श्रीमान यदुवर प्रभु बताते हैं कि उन्होंने प्रभुपाद को शुरुआत के दिनों में एक शब्द एक वाक्य बताते हुए सुना, उससे उनको काफी प्रेरणा मिली। तो प्रभुपाद कहे हैं, आई वॉन्ट द प्रिविलेज ऑफ फाइटिंग फॉर कृष्ण, मैं भगवान के लिए भगवान की सेवा के लिए जो अवसर है उसके लिए अपनी जान तक दे दूं, ये मुझे सुविधा चाहिए, भगवान की सेवा, भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊं। तो जब उन्होंने देखा कि प्रभुपाद का क्या भाव है, क्या स्पिरिट है, कि भगवान की सेवा के लिए कितने तत्पर है, तो उनको बड़ा भक्ति में सेवा ये भाव आ गया और उन्होंने भी प्रभुपाद के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो जब जब भक्ति होती है तो भक्त सोचता है कि गॉड इज ग्रेट एंड आई एम वेरी स्मॉल, देयरफॉर माय ड्यूटी इज टू ऑफर माय प्रेयर्स टू द लॉर्ड, भगवान विभू है मैं अणु हूं, तो इसलिए मेरा एकमात्र कर्तव्य है मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान को प्रार्थना अर्पण करूं। ओनली ऑन दिस बेसिस कैन वन अंडरस्टैंड एंड रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, इसी भावना पर बलबूते पर व्यक्ति भगवान को समझ सकता है और उनकी सेवा कर सकता है। तो इसलिए जितना हम अपने आप को नीच माने और है ही हम, लेकिन जितना आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करते हैं तो हर बार हमें समझेगा अरे मैं तो नाहक ही अपने आप को महान समझ रहा हूँ, तो दीन दीन हीन हमारा भाव बढ़ता जाएगा। लेकिन उसके विपरीत अगर गर्व बढ़ रहा है तो हमें सोचना होगा कि भक्ति में ज्ञान नहीं मुझे प्राप्त हो रहा है, कुछ और ही हो रहा है, ये जो मंडन गुडनेस वाला ज्ञान है वो शायद मेरे अंदर जा रहा है जिसके कारण अहंकार बढ़ रहा है। तो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की भी बात नहीं कर रहे, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं जैसे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को एकदम प्रभु जी मैं तो क्या हूँ, मैं तो बहुत ही गंदा हूँ, मैं तो इतना गिरा हुआ हूँ, कोई भी मेरा उद्धार नहीं कर सकता, गुरु महाराज भी उद्धार नहीं कर सकते, भक्त भी उद्धार नहीं कर सकते, भक्ति भी उद्धार नहीं कर सकते, भगवान आए तो भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते, यानी मैं भक्ति नहीं करना चाहता, मैं नाम जप नहीं करूंगा, आपके वचनों का पालन नहीं करूंगा, मैं तो बहुत ही पतित हूँ। तो ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये एक ऐसा भाव है कि भगवान आपका मदद नहीं कर सकते, भक्ति मदद नहीं कर सकती, गुरुदेव मदद नहीं कर सकते, इतना अहंकार तुम में, इतना पतित हो गए कि दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं भगवान तक जो आपका उद्धार कर पाए, इतना इतना बड़े हो गए आप, भगवान के भी बड़े हो, भगवान से भी बड़े हो गए आप, तो ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो असली नम्रता है उसमें वैसा नहीं होता, उसमें व्यक्ति अपने आप को बहुत नम्र मानता है, बहुत पीछे रखता है जब श्रेय आता है, लेकिन आगे रहेगा जब सेवा की बात होती है। इसलिए भक्तों के बीच में हम देखते हैं सेवा के लिए कितना लड़ाई होता है, अर्थात एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए ये भी भक्ति में बड़ा उच्च स्तर है कि ठीक है आपको अगर अधिक प्रसन्नता है इस सेवा के द्वारा तो आप कीजिए, और मुझे झाड़ू पोछा मार देता हूँ, फिर टॉयलेट साफ करता हूँ, फिर चले गए, तो ये भी भाव होना चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए कि भक्तों के बीच में बहुत भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए बड़ी तत्परता रहती है, इसलिए इतने सारे भक्त हैं हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको किसी को पैसा नहीं दिया जा रहा है लेकिन सब सेवा कर रहे हैं। अब ये लॉकडाउन में सेवाएं बढ़ गई है तो सब प्रसन्न है, और किसी को कुछ पैसे नहीं मिल रहे लेकिन लक्ष्मी मिल रही है, भक्ति जो लक्ष्मी है, राधा रानी है, वो हृदय में प्रवेश कर रही है, क्योंकि भक्तों का जो भाव है भगवान की सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का, उसके द्वारा भक्ति देवी प्रसन्न होकर सभी के हृदय में पूरे हृदय में प्रवेश कर रही है। अगला श्लोक जो है 13वां, उसमें प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे भगवान, ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता आपके निष्ठावान दास है, क्योंकि वे दिव्य पद पर स्थित है, अतः वे हमारी प्रहलाद तथा उनके असुर पिता हिरण्यकश्यपु की तरह नहीं है, इस भयानक रूप में आपका प्राकट्य स्वांत सुख के लिए आपकी लीला है, ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार अभ्युदय के निमित्त होता है। तो इसमें भी प्रहलाद की नम्रता दिखती है, जिसमें वो देख कहते हैं कि उसमें आई प्रोमिनेंट नहीं है, मैं। तो हमारे जीवन दिनचर्या में हमें ये भी देखना चाहिए कि भी हमारे मुंह से ज्यादा मैं तो नहीं आता, जहां तक दीनहीन का दीनता हीनता की बात है मैं आए तो उचित है, लेकिन जहां भी श्रेय की बात है, कुछ ऊपर की स्थिति की बात है, तब जितना हो सके हम या उन भक्त का नाम आए तो अच्छा है, न तो मेरा नाम हो। ये भाव भक्ति के लिए बहुत ही विशेष है, ये नम्रता है। जैसे हम शुरुआत के दिनों में सुनते हैं उस व्यक्ति की कथा, जो मिस्टर राम जो गांव से थे, वहां तो बहुत सारे अनपढ़ी लोग थे उनके माता पिता सब, लेकिन वो कैसे तो अच्छी पढ़ाई की उन्होंने और ग्रेजुएट हुए, और गांव में क्या जॉब मिले, तो थोड़े शहर में प्रयास कर रहे थे। बहुत प्रयास करने के बाद एक कंपनी में उनको जॉब मिला, एक सबसे नीचे की स्थिति में, लेकिन बहुत ही नेक अच्छे व्यक्ति थे, तो उनका प्रगति होने लगा, ऊपर ऊपर आने लगे, इतना कि बॉस बहुत प्रसन्न होकर उनको एक मैनेजर बना दिया। यहां तक कि वो सोच रहे थे कि उनको MD बनाया जाए, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो फिर वो भी बना दिया उन्होंने। तो बाकी के सब जो मैनेजर थे उनके नीचे चले गए, बोले हम तो सालों से यहाँ जॉब कर रहे हैं, हमारा तरक्की नहीं हुआ, इनका इतना तरक्की। तो फिर उन्होंने षड्यंत्र रचा और फिर बॉस जो कंपनी के मालिक थे उनके पास गए, बोले सर सर आपको पता है क्या, ये राम ये क्या करता है, दोपहर में जब लंच टाइम होता है हम सब लंच लेते हैं, तो ये फटाफट लंच लेके अपने केबिन में जाता है और रूम को केबिन को लॉक कर देता है और फिर अंदर क्या करता है पता है क्या आपको, बोले क्या करता है वो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे तो व्यक्ति दूषित हो जाएगा, तो बेचारे बॉस भी थोड़े दूषित हो गए, बोले क्या करता है वो, क्या षड्यंत्र करता है, बोले हमें तो संशय है वो कंपनी का बहुत सारा माल उसने चोरी किया है और वो कुछ तो अंदर ब्यूरो में लॉकर में कुछ तो छुपा के रखा है, ट्रंक में खोलता है उसको, उसका चाबी सिर्फ उसके पास ही रहता है, किसी और के पास है ही नहीं, तो आप कल उसको पकड़ लीजिए। बोले ठीक है बताना मत, कल हम जाएंगे। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने जैसे ही लंच के बाद वो मिस्टर राम चले गए केबिन में, तो इन्होंने तुरंत जाके दरवाजा ठकठकाया और बोले कौन है, बोले मैं बॉस। तो तुरंत उन दरवाजा, बॉस आप अभी कैसे आए, बोले क्या कर रहे थे तुम, बोले नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बोले नहीं बताओ क्या कर रहे थे, तो लॉकर तो खुला था और ट्रंक, बोले ये ट्रंक में क्या है खोलो उसको जल्दी से, बोले नहीं कुछ नहीं सर कुछ नहीं है। तो फिर खोला उनको और तुरंत वो देखा बॉस ने क्या है, देखा तो एक फटी हुई पैंट थी उसमें, एक फटा हुआ शर्ट था, बोले ये क्या है, उन्होंने देखा शायद जेब में कुछ पैसा होगा, तो जेब में कुछ पैसा ही नहीं, बोले ये क्या है मिस्टर राम, ये तो फटे हुए कपड़े है, बोले सर यही वो कपड़े हैं जिन कपड़ों को पहनकर मैं आपके पास ये जो नौकरी मांगने की भीख मांगने के लिए आया था। तो फिर बोले वो तो हो गया ना, अभी तो तुम बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, अभी तो तुम्हारे पास कोट सूट टाई बूटी वो सब है, अब ये क्यों रखे, बोले ये जब होगा मैं MD की स्थिति में, हो सकता है मुझ में गर्व आ जाए और मैं पूर्व स्थिति को भूल जाऊं कि मैं कौन था, मैं कितना फटीचर था, तो इसको न भूलू इसलिए मैंने इसको मेरे ट्रंक में रखा है, हालांकि किसी को दिखाता नहीं, लेकिन रोज दोपहर को लंच के बाद मैं इसको खोलकर देखता हूं कि मेरी क्या हैसियत थी, मैं कितना दर दर की ठोकरें खा रहा था और आप कितने महान कि आपने मुझे आश्रय दिया आपकी कंपनी में, और मैं तो कुछ मेरी कुछ हैसियत है नहीं, आपने मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। तो इतना बॉस अश्रु प्रवाह हो गया, बोले मिस्टर राम मेरा एक प्रपोजल है, यू हैव टू एक्सेप्ट, आपको स्वीकार करना ही होगा, ना मत बोलना। बोले सर आपके लिए तो मेरा जीवन है। बोले यू आर हेंसफोर्थ माई बिजनेस पार्टनर, आज से आप मेरे बिजनेस क्या बोलते पार्टनर है बस। तो वो तो बेचारे एकदम हड़बल हो गए, बोले ना बोल भी नहीं सकते, बोले जैसी आपकी इच्छा। तो ये भाव होना चाहिए कि हम कौन थे भक्ति में आने के पूर्व, क्या स्थिति थी हमारी, कितनी दर दर के ठोकरे खा रहे थे, कितना समस्या। जैसे मैं या दिन अपने याद करूं पर फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग के, वो एक मेस के कारण मेरा पूरा दिमाग में मेस हो गया था, कौन सी मेस ज्वाइन करूं, हालांकि हॉस्टल में रह रहा था और वहां की मेस, और वहां की मेस में क्या, वो मेस वो गुलाब जामुन संडे को जो मिलता था, गुलाब जामुन को ऊपर करो ऐसा रखता था कि ये पानी से बाहर आया हुआ है, वो जो शुगर सिरप रहता था वो क्या रहता था, वो पानी रहता था उसमें, कुछ पाक रहता था थोड़ा बहुत। तो उसके कारण फिर हम थोड़ा PICT कॉलेज के बाजू में जाके देखा, उधर एक जैन मेस है, वहां बाजू में ही PPT पतंग प्लाजा था जहां हमारे भक्त भी रहते थे, लेकिन उनसे तो पता नहीं था मुझे, राधेश्यामपुर पता नहीं थे, तो सामने जैन मेस था, तो जैन मेस में इंक्वायरी किया, वहां शुद्ध शाकाहारी था, प्याज लहसुन नहीं, लेकिन वो थोड़ा दूर था, हम तो बड़े पढ़ाऊ लोग थे, पढ़ने में बहुत रुचि, कौन जाए आए बार बार, तो ऐसे करके फिर और एक मेस देखा और कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो एक खाने के लिए इतने मोहताज थे, पैसा था लेकिन उचित मेस नहीं मिल रहा था, उसके कारण मेस हो गया था पूरा जीवन में और दिमाग में। और भक्तों के बीच में आ गए प्रेमनिधि प्रभु, राधेश्याम प्रभु, राधेश्याम प्रभु तो मंदिर में थे, प्रेमनिधि प्रभु और सब ब्रजवासी प्रभु सब भक्त थे, उनके बीच में आ गए, बस प्रॉब्लम सॉल्व, हाई क्लास प्रसाद। मंदिर से खिचड़ी आता था कुंज बिहारी मंदिर से, 7 महीने खिचड़ी आया, हम में से एक जन में कभी मुंह खोला नहीं ना, कभी दिमाग में आया कभी कि खिचड़ी खा रहे सुबह शाम। वो तो राधे श्याम प्रभु ने सोचा कि सब जवान लड़के हैं, इस जवानी में खाली खिचड़ी खाना उचित नहीं है, थोड़ा चपाती भी खाना चाहिए। तो फिर शायद शुरुआत के दिनों में थोड़ा चपाती करते थे उधर, और वहां से आता था, लेकिन हम भक्त संख्या प्रचार बहुत हो रहा था तो संख्या ज्यादा थी, तो फिर हमें ही बताया गया राधेश्याम प्रभु के द्वारा कि आप ही चपाती बनाओ। फिर हम चपाती बनाते थे, बाकी मंदिर से आता था राइस दाल वगैरह। तो हम देख सकते हैं कि भक्तों के बीच में आने के पूर्व हमारी क्या स्थिति थी, दर दर के ठोकरे खा रहे थे हम। हाँ, हमारा हुलिया भी कैसे था। हाँ, किसी किसी तो बड़ी बड़ी मुच्छड़ थे ना, मुच्छड़ कब हमारे फोटो भी देखेंगे भक्ति में आने के पहले तो ऐसा लगेगा अरे कितना बड़ा राक्षस था मैं ग्रास शरीर स्थूल शरीर के रूप में। अभी भगवान ने एकदम सुंदर वस्त्र दिया है, सैफरन प्रोपा जैसे कहते हैं, अभी सैफरन पहनते हैं, सैफरन गले में माला रहती है, बिडबैक, तो ऐसे लगते हैं जैसे वैकुंठ से पधारे हुए लोग है, वैकुंठ दूत है। लेकिन वही हमारे पहले का फोटो देखेंगे तो सोचेंगे अरे मैं तो भूत था अभी दूत बन गया। तो अपनी पूर्व स्थिति को कभी भूलना नहीं चाहिए कि किसने मैं कौन था और मुझे क्या बनाया गया, नहीं कि मैं कौन हूं अभी, मुझे क्या बनाया गया, यानी किसी और ने बनाया, मैं खुद नहीं बन गया हूं, बनो मत। किसी ने बनाया है तो जिसने बनाया उसके चरणों में सर हमेशा झुकना चाहिए और उसके उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए, ना कि यह कि मैं कौन हूं अभी। ये बड़ा माया की बड़ी माया की चाल है कि मैं कौन हूं, मैं पदाधिकारी हूं, मैं ये हूं, मैं सीनियर हूं, मैं सैफरन हूं, मैं ये हूं, ये सब माया की चाल है। मुझे बनाया गया है, ये सैफरन मेरे ऊपर डाला गया है, ना कि मैं इतना क्वालिफाइड था कि ये सैफरन के लिए मैं तो लायक था ही पहले से, नहीं अभी भी लायक नहीं हूं, नालायक ही हूं, लेकिन मेरे ऊपर डाला गया है तो मैं इसके पात्र नहीं हूं। जैसे वर्दी पहनता है कोई पुलिस तो सोचना नहीं चाहिए कि मैं बड़ा महान पुलिस ऑफिसर हूं, नहीं मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट की सेवा करूंगा। उसी तरह से प्रभुपाद ने ये वर्दी डाली है, प्रभुपाद ये प्रसाद दे रहे हैं, प्रभुपाद ये जीवन शैली दिए, तो उनके चरणों में झुकता हूं, उनके वचनों के अनुसार अपना पूरा जीवन में बिताने का प्रयास करूंगा, और वो संभव है जब तभी जब मैं भक्तों के समूह में रहूं, अन्यथा नहीं। एकाकी अमार नहीं पाए बल, हरिनाम संकीर्तने, अकेले से मुझसे भक्ति नहीं होगा, लेकिन भक्तों का साथ हो, एक भी भक्त क्यों ना हो साथ में। जैसे अभी प्रवचन में यहाँ तीन चार ही भक्त, शुरुआत में तो एक ही थे तो, लेकिन जो भी है एक भी है तो शक्ति है, क्योंकि एक से भला दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, जितने अधिक और अधिक अच्छा। लेकिन एक भक्त से भी कितना प्रेरणा मिल सकता है, ये समय में थोड़ा समझ में आता है, नहीं तो जब बहुत ज्यादा भक्त हो जाते तो हम सोचते इतने सारा भीड़भाड़ इधर, कुछ लोगों को भेज दो बाहर प्रचार के लिए क्योंकि मुझे इधर थोड़ा ये हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है, तो प्रचार के लिए जाए भक्त, लेकिन क्यों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए, तो वो ठीक नहीं विचार। ये विचार ठीक है कि जा रहे देखो तारे कहो, वो भी जाए मैं भी जाऊं, सब जाए हम बाहर और प्रचार की सेवा करें हम, तो ये तरीका, इस तरीके का भाव होना चाहिए, नम्रता का। और प्रहलाद की हर वाणी में से ये जो भाव है वो प्रकट होता रहता है। तो ये 13वें श्लोक तक हमने चर्चा की, तो 2 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न है, जो 4-5 भक्त है। हाँ, प्रश्न पूछने वाले भक्त आ गए, प्रश्न सागर प्रभु। हरे कृष्णा, दासोस्मी, भक्तिधान ठाकुर कहते थे, जो भी शेयर किया है खूब भागवतम से है, प्रभुपाद के तात्पर्य है। और जैसे मैंने कहा, ये प्रवचनकार ने कहा, ये प्रवचनकार ने कहा, तो जो भी गीना सुना वगैरह वही।
यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द हार्ट ऑफ प्रहलाद महाराज,
हरे कृष्ण,
थ्रू सो मेनी लेसन्स। एस्पेशली व्हाट आई डीपली अप्रिशिएट वाज व्हेन वी चैंट इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड प्रहलाद, लॉर्ड विल बी ईगर टू से वेयर इज प्रहलाद, वेयर इज प्रहलाद। थैंक यू सो मच फॉर sharing so many things. My question is, to my understanding, that what is this quality of humility, kaisi uski paribhasha hai jo ki main mere dimag mein laga sakta hu, to aap agar paribhasha bataenge to
namrata hoga. Ha, namrata to mujh mein hai nahi, lekin jaise Prabhupada keh rahe hain unki vaani ko dohrane ka prayas kar sakte hain. Jaise kehte hain, humility is not to be anxious of having derived the सेटिस्फैक्शन ऑफ बींग ऑनर्ड बाय अदर्स, तो दूसरे लोग मेरा सम्मान करें, अपनी अमानी है ना, अपने लिए मान नहीं, दूसरों के लिए मान देना, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे लोग मुझे मान दे, और मैं दूसरों का मान दू ना न दू, सब मुझे मान देना चाहिए, तो दूसरे मुझे मान दे ये भावना होती है, और कोई मान दे तो बहुत ही अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन आता है, कितना अच्छा, ये प्रभु बहुत अच्छे क्योंकि मुझे मान देते हैं। तो नॉट टू डिराइव सेटिस्फैक्शन इन हैविंग बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स, तो इसमें आनंद ना लूटना, तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो, मैं जिस स्थिति से आया हूँ वहां तो यही बताया गया था हमें बचपन से लेके कॉलेज में वगैरह सब कुछ, तो लेकिन भक्तों के बीच में रहेंगे तो हम देख सकते हैं कि भक्तों में ये गुण होता है कि वो कभी भी अपने सम्मान के लिए इधर उधर भागते नहीं, लेकिन दूसरों का जहाँ सम्मान हो उनको भेज सकते, जैसे आपने अभी आने वाले नरसिंह चतुर्थी के एक दिन पहले जो हमारे कौन से प्रभु रथ यात्रा के जिन्होंने शरीर त्याग, हाँ जयानंद प्रभु, हाँ उनको क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर थे अमेरिका से, हाँ वो हिप्पी नहीं थे कभी, हाँ और नेकी से वो कैब ड्राइवर का सेवा कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो इतना पात्र व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियर अमेरिका से पढ़ा हुआ जवान होनहार है ना, तो इसलिए उनको बहुत जल्दी से प्रेसिडेंट बनाया जाता था, तो तैयार नहीं होते थे वो, नहीं 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 मैं क्यों, अरे इतने सारे अधिक भक्त हैं, तो लेकिन फिर भी कोई नहीं करके उनको ही बनाया जाता था, और क्योंकि इतने नम्र तो जल्द से जल्द वो एक भक्त को तैयार कर ही देते, नहीं देखो ऐसा है तुम ये सेवा अच्छे से कर सकते हो, प्रेसिडेंट की सेवा, और कुछ हुआ तो मैं हूँ तुम्हारे पीछे, चिंता मत करो, तो तुम प्रेसिडेंट बन जाओ ठीक है, तो वो बहुत उसको ये करके बेचारा वो उनकी नम्रता से ही ये होकर मान लेता था प्रभु जी ठीक है आप इसमें प्रसन्न है तो मैं बन जाता हूँ, तो फिर उनको प्रेसिडेंट बनाकर प्रभु जी अपना झाड़ू वगैरह लेकर फिर से जाते थे और झाड़ू पोछा मारते रहते थे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम सब झाड़ू पोछा ही मारते बैठे, ये भी होना चाहिए कि बड़े पद भी स्वीकार करें लेकिन बड़ा भाव न स्वीकार करें अंदर से, तो ये तभी होगा जब हम ऐसे जयानंद प्रभु जैसे महान भक्तों के साथ रहे। आप बोलेंगे वो तो चले गए, नहीं उनके बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, ये वही परंपरा है, और ये परंपरा में वो पारसमणि बनाए जाएंगे, बनाए गए हैं और बनाए ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही था वो प्रभुपाद थे वो चले गए या जयानंद प्रभु थे वो चले गए, नहीं आज के तारीख में ही भी बहुत सारे पारस पत्थर हैं प्रभुपाद ने बनाए हैं, तो उनके साथ रहेंगे तो हमें भक्ति में बड़ा जोश आएगा। इसलिए तो जानते थे देखते थे, एक व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि अरे इस फ्लैट में कौन है, इतना जोर शोर से संकीर्तन हो रहा है, कितने 100 लोग है कि 200 लोग है, तो उसने जाके दरवाजा वो खोला और देखा अंदर तो जयानंद प्रभु थे और एक जवान हिप्पी था, नया पहली बार आया था, और जयानंद प्रभु ने प्रचार से उसको इतना प्रेरित किया था कि दोनों मिलकर हरिनाम का कीर्तन कर रहे थे और दोनों उछल रहे थे, और ऐसा लग रहा था बाहर से दरवाजा बंद होने के कारण कि जैसे मानो अंदर 100-200 लोग संकीर्तन कर रहे हो, तो प्रचेता जयानंद प्रभु का इतना संकीर्तन में इतना आनंद, इतना रुचि क्यों, क्योंकि बहुत ही नम्र थे, क्योंकि नम्र भक्त बहुत नीचे रहता है और भगवान जो बहुत ऊपर है खट करके नीचे, जैसे पानी ऊपर से नीचे जल्दी से चला जाता है कि नहीं, ऊपर की तरफ नहीं जाता, तो इसीलिए हमें ऐसे नम्र भक्तों के बीच में रहना चाहिए और उनकी विशेषता सेवा करनी चाहिए। किम करोमि अहम, मैं क्या करूं बताइए, दासोस्मि, आपका दास हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाउ कैन आई सर्व यू, जैसे प्रभुपाद का भाव था, ये भाव रहेगा तो वो भक्त कभी हमें एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, ये हमारा ही मन है, माया है अंदर मन में भरी हुई, हमें लगता है कि वो मुझे एक्सप्लॉइट करेगा, मेरा शोषण करेगा, नहीं शोषण तो मेरा मन ही कर रहा है, करोड़ों जन्मों से किया है, कर रहा है और करता ही रहेगा जब तक कि मैं शरणागत ना हूं, तो इसलिए सर झुकाना होगा और फिर ऐसे भक्तों के बीच में नम्रता आ ही जाएगी, शास्त्रों के हर पन्ने पन्ने से हर शब्द से वो नम्रता उमड़ रही है पूरी, लेकिन जब तक ऐसे महान भक्तों की सेवा ना हो, भागवत पढ़ोगे भागवत स्थाने, एक व्यक्ति भागवत का आश्रय लिए बिना ग्रंथ भागवत को पढ़ते बैठे करोड़ों जन्मों के बाद भी उसका एक शब्द न समझे, लेकिन व्यक्ति भागवत का आश्रय लिए तो बिना ग्रंथ भागवत पढ़े, हाँ दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हमारे गौर किशोर बाबा जी महाराज ने कितने भागवतम पढ़ा था कि चैतन्य चरितामृत पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन बड़े बड़े पंडित यहाँ तक कि भक्तिविनोद ठाकुर उनके चरणों में आके पूछते थे कि बताइए ये जो है कैसे हम समझे, तो शास्त्र हमें दिव्य ज्ञान मस्तिष्क प्रकाशित नहीं होता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो हृदय में तभी प्रकाशित होगा जब व्यक्ति भागवत का आश्रय लेंगे, उनकी सेवा करेंगे। ठीक है, अभी समय हो गया, आपके शायद प्रश्न का उत्तर हो गया होगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।